بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد اور آل محمد پر درود و سلام کے ساتھ محترم اور عزیز ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایام شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام ہیں، ہر جگہ فضا سوگوار ہے اور محبان اہل بیت علیہ السلام نے جگہ جگہ مجالس عزا برپا کی ہوئی ہیں اور فرش عزا بچھا کر امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پرسداری میں مشغول ہیں۔ ہم بھی نور الولایہ ٹیم کی جانب سے سب سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں اور اس کے بعد آپ تمام ناظرین کی خدمت میں بی بی کی شہادت کی بہت بہت تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں۔ محترم اور عزیز ناظرین، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مقام و منزلت کو سمجھنا ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے، لیکن اگر ہم اپنے خدا سے تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے خدا کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مقام و منزلت کو سمجھنا ہوگا اور ان کی شخصیت کو پہچاننا ہوگا۔ تو ہم ان کی شخصیت کو کس طرح سے پہچان سکتے ہیں؟ آج اسی کے لیے ہم نے یہاں پہ اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، اور اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اسٹوڈیو میں اسلامک اسکالر محترمہ تسنیم زہرا کو۔ السلام علیکم تسنیم، انشاءاللہ کہ آپ خیریت سے ہوں گی۔ بہت بہت آپ کی خدمت میں بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔
میں بھی اپنے دیکھنے والے ناظرین کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اس جانسوز اور غمناک شہادت کی تسلیت پیش کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ پروردگار عالم ہمارے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
تسنیم، چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شہزادی دو جہاں کی جو شناخت ہے اور ان کی جو پہچان ہے، اسے پہچاننا اور ان کے اس مقام و منزلت کو اور اس رتبے کو جو ہے سمجھنا ایک میدان سر کرنے کے مترادف ہے، تو اس کے لیے ہم ایسی ہی شخصیت کے الفاظ ڈھونڈیں اور ایسی ہی شخصیت کو ہم معرفی کریں کہ جو خود تقویٰ کے بلند مقام پر فائز ہوں۔ تو اس کے لیے آج ہم نے جو موضوع لیا ہے وہ ہم نے رہبر معظم کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے، اور انہی کی روشنی میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر روشنی ڈالیں گے اور رہبر معظم کے ہی ہم بیانات اور ان کے زرین اقوال کو ہم لے کر چلیں گے۔ تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ سوال ہم یہ کریں گے یہاں پہ کہ رہبر کی نظر سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت پر بات کرنے کی آخر کیا ضرورت ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہی نستعین۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔
جی بالکل،
اور وہ واقعی ایک ایسی شخصیت ہیں جس کو ہم اور آپ، ہماری فکر کی جو پرواز ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی نا
ہماری، یعنی واقعی ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ہماری جو ناقص فکر ہے وہ نارسا ہے اور ہم درک نہیں کر سکتے،
نہ ہمارے الفاظ میں وہ گنجائش ہے وہ سما سکتے ہیں ہم ان کی فضیلت کو، نہ ہماری فکریں وہاں تک جا سکتی ہیں۔ ہم وہ بیان کر سکتے ہیں جو معصومین نے ہی ان کے بارے میں بیان کیا، یا ان افراد کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں ان کی اقوال میں جو عملی طور پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو واقعاً اپنے لیے نمونہ بنا سکے اور جنہوں نے ثابت کر کے دکھایا کہ انہوں نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اپنا رہبر مانا، اپنا آئیڈیل بنایا۔ اس میں عورت اور مرد کا فرق نہیں ہے، جیسے خود مشہور روایت ہے امام عصر کی کہ آپ نے فرمایا کہ میری جدہ حضرت فاطمہ میرے لیے نمونہ عمل ہیں، یعنی گرچہ آپ مرد ہیں اور بی بی سیدہ ایک خاتون ہیں، لیکن جناب سیدہ کی زندگی چونکہ ایک مرد کے لیے بھی نمونہ عمل ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں جو کچھ انجام دیا عبادی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، اجتماعی عنوان پر، وہ سب ایک مرد کے لیے بھی جو ہے وہ نمونہ عمل ہونے کی حامل ہے۔ لہٰذا اسی طرح رسول کے لیے لقد کان فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ، تو ایک عورت بھی نبی پاک کو پیروی کر سکتی ہے اپنی عبادی اور اجتماعی اور معنوی تمام پہلوؤں میں۔ لہٰذا یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات پر بات کر رہے ہیں تو ہم ایک بہت مشکل ترین عنوان لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب آپ کوئی مشکل کتاب انتخاب کرتے ہو تو اس کے لیے بڑے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی بڑی کتاب ماہر استاد کو طلب کرتی ہے تاکہ وہ سمجھا سکے۔ تو یہاں پر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت پر یا آئمہ روشنی ڈالتے ہیں اور ہم اسے بیان کرتے ہیں اور اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی سکت کے مطابق اس سے سیکھتے ہیں، या फिर हम आते हैं उन लोगों की तरफ जो मासूम नहीं है मगर मासूमीन को अपना वाकया उन्होंने हकीकी रहनुमा बनाया है, जिसमें हमारे पास सर फहरिस्त नाम आयतुल्ला खमनाई का है। रहबर मुअज़्ज़म बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में बात करती हैं और बहुत खूबसूरत नुकात बयान करती हैं। अच्छा, अब सवाल आपका ये था कि क्या ज़रूरत है, तो मैंने बता दिया, एक तो यह कि वो ख़ुद अमली तौर पर साबित कर चुके हैं कि उन्होंने बीबी फातिमा को अपना आइडियल बनाया, यानी जो जनाब फातिमा की सीरत थी उसमें जो उनका इज्तिमाई किरदार था, जो उनका जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह वाला किरदार था, जो उनका दुश्मनान खुदा के मुकाबले डट जाना था, इसार कुर्बानी और उसके साथ साथ खुदा की मार्फत और अपने अंदर बंदगी और जुहद और तकवा को पैदा करना, उसमें गैर मासूम में हमारे फ़कीह और मुज्तहिदीन सरे फहरिस्त होते और आज हमारे पास आयतुल्ला खामनाई जैसी खुदा की तरफ से दिया व हदिया मौजूद है। और इनकी गुफ्तगू हमेशा एक ख़ास नुकात की तरफ इशारा करती है जिस पर आम लोगों की फ़िक्र नहीं जाती। मसलन मैं आपसे कहूँगी कि मैंने सब्र के बारे में बहुत सुना था, पढ़ा भी था, तो जब हम इनकी नज़र से देखते हैं तो बहुत प्यारी खूबसूरत बात उन्होंने की कि सब्र के मायना हमेशा तहम्मुल के लिए जाते हैं। आप कहते हैं आपके पास कुछ भी नहीं है, आप क्या करोगे, सब्र करो, मजबूर हो तो सब्र करो, नहीं, वो कहते हैं असल सब्र ये नहीं है, सब्र यानी डट जाना, सब्र यानी इस्तकामत दिखाना, सब्र के मायने बेचारगी नहीं है, सब्र के मायने है ताकत। तो जैसे अपनी हदफ के रास्ते में जो भी मुश्किल आएगी ना, उसको आपने हटाना है और डरना नहीं है और इस्तकामत दिखानी, ये सब्र। तो एक तो ये कि वो ख़ुद बहुत अमली तौर पर हमें जो उनका किरदार इस वक्त दुनिया के सामने है, जो वो जालिम के सामने डटे हुए, जो वो हक कलमा हक को बुलंद करने वाले हैं, और वो एक ऐसे मौके पे जब फितने सर उभार रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा को बहुत सारे खतरात दरपेश हैं, वो हक गोई से पीछे नहीं हट रहे और ऐसे वक्त में उन्होंने संभाला दिया। नंबर दो ये कि उनकी शख्सियत एक बहुत गहरी शख्सियत है, बहुत बाबसीरत शख्सियत है, वो हमेशा बहुत डीप में जाके बहुत गिरा कदर मोती चुन के लाते हैं हमारी फ़िक्रों के लिए, लिहाजा जैसे मैंने मिसाल सब्र की पेश कर दी, तो वो बीबी की सीरत से भी एक बहुत अहम पहलू यहाँ पर उजागर कर रहे हैं। अच्छा। लिहाजा हम ख़वातीन को चाहिए कि हम ज़रूर उनकी नज़र से जनाब सैयदा को देखें कि उनकी नज़र एक बहुत बुलंदतरीन नज़र है, हम आम लोगों से ज़्यादा बेहतर है। और ख़ुद उनकी शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में हम जितना भी कहें वो कम है, क्योंकि मैं आपको कुछ लोगों के बारे में बता दूं वक्त के मुताबिक, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। मसलन हम रूस के सदर की बात करते हैं पुतिन की, तो वो जब आयतुल्लाह खामनाई से मुलाकात करके जाते हैं तो वो अपने तासुरात में क्या कहते हैं, वो कहते हैं मैंने हज़रत ईसा के बारे में सुना था लेकिन आज गोया मैंने हज़रत ईसा को देख लिया, यानी मैं इनकी ज़ात में ईसा देख रहा था। जब अक़वामे मुत्तहदा के जनरल सेक्रेटरी कोफ़ी अन्नान उनसे मिलते हैं तो वो मिलने के बाद ये तासुरात लिखते हैं कि जब मैंने उनको देखा तो मैं तमाम शख्सियात को भूल गया। यानी वो एक आलमी शख्सियत है कोफ़ी अन्नान और वो दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स से मिला हुआ है, लेकिन आयतुल्ला खामनाई को देखने के बाद कहता है कि अब मैं किसी को, यानी मेरे जहन में कोई दूसरा नहीं आता।
जो भी आपसे मिलता है वो उनका गर्विदा हो जाता है।
अगर आप उनकी बसीरत और उनके माशरे शनासी को, दुश्मन शनासी को देखते हैं और उनके तदब्बुर और हिकमत को देखते हैं, तो यहाँ पर हम कंडोलेज़ा अमरीका की वजारत खारजा पर साबिका वजीर खारजा, इनकी हम बात करते हैं तो वो ये कहती है कि मैं ये देखती हूँ इस सुप्रीम लीडर के अंदर एक ऐसी चीज़ है कि हम लोग बहुत बड़े बड़े अफराद बैठकर बहुत लंबे टाइम में बहुत पैसा लगाकर एक प्लान तैयार करते हैं और उस प्लान को बहुत बड़े लोगों के सुपुर्द करते हैं उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, मगर वो जो हमारी घंटों की, दिनों की, महीनों की मेहनत लगी होती है, करोड़ों डॉलर्स लगे होते हैं, इतने हमारे मास्टरमाइंड बैठे होते हैं उसको बनाने में, एक वक्त लगा के, अरसा लगा के वो एक तकरीर से ख़त्म कर देता है। तो यानी ये उनकी बसीरत है, ये उनकी हिकमत है, ये उनकी गुफ्तगू है, ये उनकी नज़र है। तो इसी तरह अगर आप ये, हम ये देखते हैं कि अगर हम इरफान और मानवियत के मैदान में आते हैं तो आयतुल्ला हसनज़ादे अमोली जो मानी हुई शख्सियत हैं, उनका बस ये जुमला ही हमारे लिए कहना काफ़ी, क्योंकि हम तो अभी तिफ्ल मकतब हैं। अच्छा। असल हम शायद उनसे भी कम हैं। तो वो ये फरमाते थे कि आप अपने कान इनकी, आयतुल्ला खामनाई की आवाज़ पर रखो।
अच्छा।
हाँ, क्योंकि इनके कान इमाम ज़माना की आवाज़ पर है। अच्छा। यानी एक मानवियत का एक तसलसल है, एक रिश्ता है जो जुड़ा हुआ है। तो जब हम बीबी फातिमा की बात कर रहे हैं जो औच पर हैं, बुलंदी पर हैं फजीलतों की, तो फिर मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बता सकती हूँ वो कौन है। या तो मासूम बताएगा या फिर वो बताएगा जिसका राबिता मासूम से ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा करीब है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर हम बीबी फातिमा की शख्सियत को पहचानना चाहते हैं तो आइए एक आलिम, एक फ़कीर, एक बाबसीरत और एक हकीम और एक दाना की नज़र से भी देखें कि
जी
जनाबे सैदा क्या हैं, ताकि आज में आज हम उनसे कुछ हासिल कर सकें बीबी सैदा से।
अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ये है कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह और रहबर मौज़म हज़रत ज़हरा की शख्सियत को नमूने अमल साबित करने में किस हद तक कामयाब रहे हैं?
देखिए, इसकी कामयाबी की मैं समझती हूँ कि 100% हद तक तो कामयाब रहे। क्यों? इसलिए कि ख़ुद इनकलाब इस्लामी ईरान इसकी सबसे बड़ी दलील है, सबूत है कि अगर बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत आइडियल के तौर पे सामने ना आती तो आज हम ईरानी इनकलाब की कामयाबी की ये सालगिरह ना मना रहे होते। 40 साल इनकलाब को गुजरे, ख़ुद 40 साल पहले इनकलाब की कामयाबी और इस 40 साल में इनकलाब का जो इम्तदाद है, जो इसका जारी रहना है, ये इसमें आप ख़वातीन को बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। यहाँ मैं इमाम खुमैनी की बात करूँगी, वो ख़ुद ये फरमाते थे कि हमारा इनकलाब ख़वातीन का मरहूने मिन्नत है, और अगर ख़वातीन ना होती तो ये इनकलाब कामयाब ना होता। अब इसमें किस तरह, देखिए दो तरीक़े से, एक ये कि ख़ुद ख़वातीन में आगे बढ़कर अपने बच्चों, अपने जवानों और अपने घर के मर्दों को तैयार किया, नंबर दो ये कि ख़ुद भी आगे आई। अच्छा, यहाँ पर एक बात बहुत मैं वाजे करती जाऊँ, मतलब ब्रैकेट में आप समझ लें कि यहाँ ख़वातीन ये ना समझें कि इससे मतलब ये है कि ख़वातीन हमेशा रोड पर रहीं जैसे मर्द थे, हमेशा जिभे पर रहीं, महाजों पर रहीं गने लेकर जिस तरह मर्द थे। बात ये थी कि मर्द नहीं आ सकता आगे जिभे पर, महाज पर, जब तक उसके बैक पर मौजूद खातून मजबूत ना हो, क्योंकि वो उसकी मजबूरी है, या माँ की सूरत में, या बीवी या बेटी की सूरत में। उन्होंने ये किया कि अपनी उन मोहब्बत की जंजीरों को काटा, उन्होंने कहा हम तुम्हें इजाज़त देते हैं जाओ। बल्कि जैसे ज़ुहैर इब्ने क़ैन की ज़ौजा के मिलता है, जैसे करबला की माँ और बहनों और बेटियों का किरदार मिलता है, तो यहाँ पर हमने देखा कि इनकलाब में ऐसा हुआ। तो अगर ये मौजूद ना होते आइडियल, तो ख़वातीन किसी भी तरीके से ये किरदार अदा ना करती और इनकलाब कामयाब ना होता, और आज तक इनकलाब मौजूद ना होता। तो ये सबसे बड़ी दलील तो ख़ुद इनकलाब इस्लामी की कामयाबी है कि वाकई वो उन्होंने जो कोशिश करी थी वो कामयाब हो गए। और कहा जाता है, और बहुत बेहतरीन बात भी है, कि इनकलाब के दो दस्तावर्द हैं, इस्लाम इनकलाब के दो फल हैं ऐसे कि जिसका मुकाबला कोई और नतीजा और कोई और रिज़ल्ट कर नहीं सकता। वो क्या है? एक महदवियत है और एक फ़ातिमिया। यानी इनकलाब से पहले आप देखें पूरी दुनिया में हज़रत मेहदी का तारुफ कितना था लोगों के दरमियान, कौन कितना जानता था, बीबी फातिमा का कितना तस्किरा होता था, उनकी शहादत और उनकी रहलत के अय्याम कितने मनाए जाते थे। अगर इनकलाब के समरात में से आप कोई समरा भी ना देखें, कोई रिज़ल्ट, कोई नतीजा हम अहमियत ना भी दें, तो इन दो चीज़ों से हम इनकार नहीं कर सकते, कोई इनकार नहीं कर सकता। और ये दो चीज़ें भी काफ़ी हैं इस्लाम की ज़िंदगी के लिए, फातिमिया का, बीबी फातिमा के किरदार का ज़िंदा हो जाना और इमाम मेहदी के तस्करी का ज़िंदा हो जाना। तो ये इमाम हज़रत आयतुल्लाह खामनाई और रहबर मुअज़्ज़म ही की मेहनतें थी। आप लोगों ने मुख्तलिफ़ जगहों पर बहुत ज़्यादा ताकीद करी, ख़वातीन को एहसास दिलाया कि वो एक इस्लामी खातून है, ख़वातीन को एहसास दिलाया कि उनके पास बीबी फातिमा मौजूद हैं। इमाम खुमैनी का एक बहुत बड़ा एहसान है इस्लामी ख़वातीन पर, और वो ये है कि उन्होंने बीबी फातिमा को ज़िंदा करा। और क्या किया? उन्होंने कहा कि 20 जवादोस्तानी ही रोज़े जाने।
बिल्कुल,
एक माँ का दिन अगर मनाना है तो बीबी फातिमा का मनाना है।
में किसी और तारीख
जी, वो आठ बाज वो अमेरिका में एक बिल पास हो गया, तो बस उन्होंने कहा यही औरतों का दिन है, तो सारी दुनिया उनके पीछे चल गई। वो मतलब नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, जो हमने बंद करके डब्बे में रख दी।
रात को पहचानवाने के लिए आपने फरमाया,
आपने कहा आलमी दिन मनाना है खातून का, तो इससे बेहतर कोई दिन ही नहीं है। ये इमाम खुमैनी का एहसान था कि उन्होंने औरतों को तारुफ करवाया और एक ज़िंदगी दे दी। वाकई हमारे बारहा मौक़ों पर उन्होंने समझाया कि बीबी ज़ैनब का किरदार क्या था, बीबी फातिमा का किरदार क्या था। लिहाजा इमाम खुमैनी के ये जुमले मैं यहाँ बयान करना चाहूँगी, और आज के भी रहबर मुअज़्ज़म इसी बात की तायद करते हैं अपनी बातों में। तो इमाम खुमैनी फरमाते थे कि बीबी ज़ैनब, बीबी फातिमा अगर मर्द होती तो पैम्बर होती, बेशक पैम्बर, उनमें तमाम सिफाती वेदुस इसके कि उनको ज़िम्मेदारी नबूवत नहीं दी गई, उनको ज़िम्मेदारी इमामत नहीं दी गई, लेकिन तमाम क्वालिटीज़ अम्बिया की उनके अंदर मौजूद थी। आप ये देखिए कि उन्होंने जवानी में वो चीज़ साबित करके दिखाई जो अम्बिया अपनी बुढ़ापे में या अपनी एक लंबी उम्र में साबित करते थे, तकवा, परहेज़गारी, मुख्तलिफ़ मौक़ों पर। यानी उनके अंदर वो क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इम्तिहानात होती हैं अम्बिया के, और वो अपने उन इम्तिहानात को अपनी सिफात के ज़रिए से कामयाबी से गुजारते। बीबी फातिमा ने वो तमाम दौर एक 18 से 20 साल, बाद रिवायतों में 25 साल 23 साल, मैक्सिमम आपकी एज है, इसमें वो तमाम चीज़ें साबित करके दिखाई जो कि एक नबी के अंदर मौजूद होती है, वो एक मुकम्मल इंसान।
एक मकाम पर रहबर मौज़म ने फरमाया था कि जब अगर जब हम जब ये बताया जा रहा है कि बीबी जो है वो मासूम है और असमत के मकाम पर फायज़ है, तो इसको कबूल कर लेना चाहिए।
बिल्कुल, वो कहते हैं सिद्दीक़ा कुबरा हैं,
सिद्दीक़ा कुबरा है
वो सिद्दीक़ा कुबरा है, और हम उनके मकाम को नहीं समझ सकते, लेकिन वो बार बार ये ख़वातीन को एहसास दिलाते हैं कि आप अपने आप को कम मत समझें। आपकी आइडियल बीबी फातिमा, इस्लाम ने बीबी फातिमा का नमूना आपके सामने पेश किया, जो अगर आप ये देखिए कि यानी तीन चीज़ें ऐसी होती है ना कि जो हमारी ज़िंदगी को तश्कील देती हैं, उनमें एक हमारी इनफरादी हैसियत होती है, एक हमारी इज्तिमाई हैसियत होती है कि हम इज्तिमा में किस तरह जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं इज्तिमा के लिए, है ना, और एक हमारा एक बंदगी और एक खुदा के साथ एक राबता होता है। तो जब हम इज्तिमाई में आते हैं तो वहाँ एक सियासी उनसर भी इसमें शामिल हो जाता है। अब आप ये देखिए कि अगर हम बीबी फातिमा की ज़ात के इन तीनों की ज़ात को इन तीनों हैसियतों से देखें तो हमें वो बेमिसल नज़र आती हैं।
एक और सवाल मैं करती चलूं, और वो ये है कि रहबरे मौज़म ने हज़रत जहरा सलामुल्लाह अलैहा की मारफत और उनकी मानवी शख्सियत पर क्या इरशाद फरमाया है?
देखिए, रहबरे मौज़म ने हमेशा खातून को,
बहुत अच्छी चल रही है और लेकिन ये मौजू ऐसा है कि इसे हम चार लफ्ज़ों में नहीं समेट सकते हैं, लेकिन
बहरहाल
जी बिल्कुल।
तो देखिए, जिस तरह रहबर मुअज़्ज़म मुख्तलिफ मौक़ों पर ख़वातीन को यह एहसास दिलाते हैं कि उनकी निजात बीबी फ़ातिमा की सीरत को अपनाने में है, वहाँ वो बीबी फ़ातिमा के भी ज़िंदगी के उन गोशों से यानी पर्दा हटाते हैं जिनको हमने नज़रअंदाज किया हुआ है। अच्छा। या जिनको हमें बहुत ज़्यादा देखना चाहिए, पॉइंट आउट करते हैं, हाईलाइट करते हैं, और वहाँ पर एक मानवी पहलू है बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का। तो रहबर मुअज़्ज़म बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो फरमाते हैं कि देखिए, बीबी फातिमा का एक लक़ब है सैयदतुन निसाइल आलमीन। नबी ने फरमाया कि ये तमाम जहानों की औरतों की सरदार हैं, जबकि मरियम अपने ज़माने की औरतों की सरदार थी। या आपको सैयदतुन निसाइल दुनिया भी कहा गया है, लेकिन एक कैटल आपका इन दोनों से बड़ा है।
अच्छा।
और वह है सैयदतुन निसाइल अहलिल जन्ना। और यहाँ पर रहबर मुअज़्ज़म बहुत बारीक नुक्ते की तरफ इशारा करते हैं जिस पर हमें तवज्जो करनी चाहिए, और वो ये है कि आप फरमाते हैं कि देखिए, कुरान में दो खवातीन को आइडियल बनाया गया, मर्द व जन का, यानी यहाँ औरतों का आइडियल नहीं बनाया, मर्दों का भी आइडियल बनाया। कहाँ? सूरह तहरीम की आयत नंबर 11 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु इमरात फिरऔन। यानी खुदा कहता है, हम तुम्हें मिसाल देते हैं साहिबान ईमान को, यहाँ मर्द व जन की तशखीस नहीं है, दोनों से मुखातिब है। इन दोनों के लिए किस में नमूना है? इमरात फिरऔन, जनाब आसिया की तरफ इशारा है।
अच्छा।
और इसी की अगली आयत जो 12वीं आयत है उसमें कहते हैं, वह मरियम इब्नता इमरान, और हज़रत मरियम बिनत इमरान में भी मोमिनीन के लिए क्या है? आइडियल है, उस्वा। अच्छा। है, नमूना है, अमल है ये दोनों ख़वातीन। तो अब यहाँ पे बात ये है कि ये फिर रेबर फरमाते हैं कि देखिए, अब ये दोनों खातून क्या हैं? जन्नती हैं ना, बहिश्त में जाएंगी ना, जितनी औलिया अल्लाह ख़वातीन हैं वो सब बहिश्त में जाएंगी, उनका मकाम बहिश्त है। और उस बहिश्त में जो खातून सरदार हैं वो कौन है? सैयदतुन निसाए अहलिल जन्ना। बस हज़रत मरियम से बढ़तर कौन हुई? बीबी फातिमा। बीबी मरियम जन्नत में जा रही हैं, बीबी आसिया, क्योंकि वो बेहतरीन खातून थी, मगर बीबी फातिमा उनकी सरदार बनकर जा रही हैं। लिहाजा हम नहीं समझ सकते नाबे फातिमा कौन है, फ़कत इतना समझें कि हमें जहाँ पर भी हिदायत चाहिए बीबी फातिमा की तरफ जाना है, या इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नामे में जहाँ हम बहुत सारे दुरूद व सलाम पढ़ते हैं आइमा पर, मासूमीन पर, वहाँ बीबी फातिमा की जब बात करते हैं तो अल्लाहुम्म सल्लि अला फातिमा बिन्त नबी का, और फिर उसके बाद ज़ौजता वली व उम्मे सिबतैन अल हसन वल हुसैन सैयद शबाबिल अहलिल जन्ना। यह बीबी की फजीलतें हैं कि वह नबी की बेटी हैं, आम शख्स की बेटी नहीं है, वो एक वली की ज़ौजा हैं। लेकिन कह सकता है कोई कि ये आपका इख्तियार नहीं होता, आप किस घर में पैदा हों और शादी हो तो किससे हो, बाज़ात ये भी आपके इख्तियार में नहीं होता, लेकिन जो चीज़ें आपके इख्तियार में हैं और आपने करनी है वो आगे वाले मरहले में यहाँ बयान करती हैं। उम्मुस सिबतैन, यानी आप ऐसी तरबियत करें कि आपके बच्चे जन्नत में जाएँ, जन्नत के सरदार ना बने तो कम से कम जन्नत में तो जाएँ। फिर बीबी फातिमा ने एक किरदार अदा किया। उसके बाद जो एक आगे मैं थोड़ा सा बयान करूँ, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है कि आप उसी ज़्यारतनामे में इमाम रज़ा के पढ़ते हैं बीबी फातिमा के अलकाबात को, तो कहते हैं तोहरतु ताहरतुल मुतहरा। लेकिन ये तीनों वर्ड तहारत से निकले में, लेकिन तीनों के अलग मायना हैं। मतलब तोहरत खुद एक तोहर जो है वो पाकिजगी के मायनों में एक मजदर है, लेकिन ताहरा इसमें फाइल है, यानी वो जो पाकीज़ा करती है, और मुताहरा जो पाकीज़ा हो चुकी होती है। बीबी फातिमा की पाकीज़गी इतनी ज़्यादा है कि उनको तहारत के तमाम औज़ानों में और तमाम शक्लों में ढाल दिया जाए तो भी तहारत कम पड़ जाए। जनाब फातिमा का दिल और दिमाग और रूह और जिस्म और गोद हर चीज़ पाक है, यानी आप पाकीज़गी का नाम है। लिहाजा इसीलिए इमाम हुसैन भी अब फख्र करते थे तो कहते थे कि असलाब शामिका वल अरहामिल मुतहरा, यानी ना फ़कत वो पाक है बल्कि वो पाक करने का वसीला है मेरी माँ। तो जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के ये मोरिद थे जो बार बार रहबर मुअज़्ज़म बताते हैं ख़वातीन को कि देखो अपने आप को पाक रखो, इफ़्फ़त और हया का दामन हाथ से ना जाने दो। बीबी फातिमा ने अगर आप उनको घर में देखें तो बेहतरीन बीवी हैं, बेहतरीन माँ हैं, बेहतरीन बेटी हैं, बेहतरीन खातून खाना हैं, घर के काम काज में एक्सपर्ट हैं, खाने पकाने में एक्सपर्ट हैं, घर के सुकून में बहुत माहिर हैं। उसके बाद अगर आप माशरे में देखते हैं तो बेहतरीन खातून हैं, मददगार हैं, कितने हाजतमंद दरवाजे पे आ रहे हैं, कोई खाली हाथ नहीं जा रहा, नोते मुँह तआम देने वाली हैं, यानी बहुत ज़्यादा अल्लाह की राह में इन्फाक करने वाली हैं। अच्छा उसके बाद आप बंदगी में देखें तो हसन बसरी जो ख़ुद अहले बैत की फ़िक्र पे नहीं चलते मगर वो इस बात का इकरार करते हैं कि मा काना फ़ी हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत मुहम्मदिया में कोई फ़ातिमा जितना इबादत गुजार नहीं है। कानत तकुमो हत्ता तबरमा कदमा, वो इस तरह इबादत करती थी कि खड़े होने की बिना पर, कसरत की बिना पर पाँव हम कर जाते थे। तो वो ये बात कह रहे हैं कि फातिमा जैसा कोई इबादत गुजार इस उम्मत पे नहीं गुजरा। तो इबादत कर रही हैं तो इस मकाम पे कर रही हैं, इन्फाक दे रही हैं तो उस मकाम पे कि आयतें नाजिल हो रही हैं, लेकिन जब अपने घर के काम कर रही हैं तो नहायत माहिर खातून, सलीकेमंद खातून की तरह कर रही हैं। और उसके बाद जब उम्मत पर कोई ऐसी बारी आती है रसूल के रहलत के बाद फितने, तो खुतबे भी दे रही हैं, बाहर भी जा रही हैं, जिहाद भी कर रही हैं, लोगों के महाजर अंसार के दरवाजे भी खटखटा रही हैं। तो बहरहाल यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा जो हैं वो हर मैदान में, यानी कोई ये नहीं, आमतौर पर तसव्वुर होता है ना कि अगर कोई बहुत इबादत गुजार है तो उसे सियासत का नहीं पता होगा, और अगर कोई बहुत सियासी है तो उसके पास नमाज रोज़ों का टाइम नहीं होगा, या एक खातून है तो वो किसी एक ही चीज़ में माहिर होंगी। लेकिन यहाँ पर रहबर मुअज़्ज़म कहती हैं कि हमने ये चीज़ सीखनी है बीबी फातिमा से कि बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा बयक वक्त तमाम शोबों में माहिर, बस एक इस्लामी खातून अपने हिजाब के साथ, अपनी शोहरदारी और अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत के साथ इज्तिमाई कामों में हिस्सा ले सकती हैं।
बहुत शुक्रिया तस्नीम, अगरचे गुफ्तगू इतनी अच्छी और इतनी यानी इल्म वाली, और वो है कि इसको यानी हमारा दिल तो नहीं चाह रहा कि हम इस तरीके से इसको समेटें, और वाकई ये मौजू इतना वसी और इतना गहरा है कि हम चार लफ्ज़ों में हम इसको नहीं समेट सकते हैं, लेकिन बहरहाल क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश कम होती है इस वजह से हम इतनी ही गुफ्तगू कर पाते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वाकई आपने बहुत ही यानी अच्छे पॉइंट बयान करे। और मोहतरम और अजीज़ नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, और एक बार फिर हम आप सब की खिदमत में शहज़ादी दो आलम की शहादत की बहुत बहुत ताज़ियत और तसलियत अर्ज़ करते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।